चलिए ठीक है, शुरू करते हैं फिर इंश आज के लेसन 153 से इंशाल्लाह तफसील। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ब्राह रास्त आयतों पर जाने से पहले हम सबक का खुलासा देखेंगे। बहुत ही जी, आप लोग ले लीजिए चंद मिनट, मैं इसको दोबारा दोहराऊंगी। खोल लीजिए अपने नोट, सब कुछ तैयार है, और कोशिश किया करें कि जो तिलावत चलती है उसके बीच में आप हर चीज़ के लिए रेडी हों, ठीक है? अपने आप को बिल्कुल फ्रेश कर लिया करें। मुझे फीलिंग आती है जैसे भगदड़ मच जाती है ना, जो ही मैं सबक शुरू करती हूँ आप लोग भी एक्टिव हो जाते हैं। चलिए चलिए, तफसीर से पहले हम आयात का खुलासा देखेंगे। बहुत ही अहम सबक है आज के सबक में। जो चीजें हमारे सामने आएंगी, सबसे पहले जुबान का सोच समझ कर इस्तेमाल। इसको हम मुख्तलिफ एंगल से देखेंगे, क्योंकि अरबी में एक कहावत है जिसका खुलासा यह है कि तलवार का घाव तो भर जाता है लेकिन जुबान का घाव नहीं भरता। और खास तौर पे जब इंसान दीन के कामों पे आ जाता है, जब मखलूक को खालिक से जोड़ने का काम करे, तो उस वक्त कितना सोच समझ के बात करने की जरूरत होती है। ये हमारे आज के सबक का पहला मज़मून है, मौजू है, और खास तौर पे हम सबको अपने मुहासबे की भी इसमें मदद मिलेगी कि क्या हमारी ही बातें ऐसी तो नहीं होती कि जिनकी चिड़ में आकर लोग दीन की बात को नहीं मानते। फिर दूसरी चीज कि किसी को जन्नती और जहन्नमी होने के फतवे तुम ना दो। रब्बुकुम आलमु बिकुम, तुम्हारा रब खूब जानता है। तुम क्या जानते हो कि कौन कैसा है, तुम जाहिर पे क्यास करो और मामला अल्लाह के हाथ में छोड़ दो। फिर अगली चीज हम देखेंगे कि अल्लाह जब चुनने लगता है तो छोटे कद के आम शक्ल के दाऊद को चुन लेता है, लेकिन जब अल्लाह का चुनाव इल्म की बुनियाद पे होता है तो दूसरों को एतराज करने की उसमें कोई जरूरत नहीं होती। फिर अगला मौजू है आज का वसीला। पीछे बात हो चुकी है सूरत मायदा में, यहां उसी पे हल्की सी बात दोबारा होगी कि जिनका वसीला तुम ढूंढते हो वो तो बेचारे खुद अल्लाह से अपने लिए वसीला ढूंढ रहे हैं। फिर अगली चीज हम देखेंगे कि अल्लाह ताला किसी बस्ती को तबाह करने से पहले वहां पैगाम पहुंचाता है। और अगली बात कि जब अल्लाह की तरफ से कोई निशानी या नेमत आ जाए तो उसका इनकार करना या उसकी नाकदरी करना अल्लाह के अजाब को बुलाने के बराबर है। फिर अगली चीज हम ये देखेंगे कि निशानियां देखकर भी लोग क्यों नहीं मानते, क्या रुकावटें हैं रास्ते की। और फिर देखेंगे कि शजरे मलूना क्या है और कुरान में इसका जिक्र क्यों आया। और उसके बाद फिर बहुत तफसील से आदम और इबलीस का किस्सा और इबलीस के हथकंडे। सबसे ज्यादा डिटेल से इबलीस इन आयतों में खुल के नजर आता है। सूरत अलराफ में भी उसके धमकियां थी दाएं से बाएं से आगे से पीछे से आने की, लेकिन इधर तो ऐसे लगता है कि वो हमारी नस्लों को कच्चा खा जाएगा। तो हम तफसील से देखेंगे जिसमें शैतान की आवाज यानी बातिल आवाजें, जिसमें म्यूजिक और खिलाफ हक हर बात का आएगा। तो इस सबक का भी तरीकाकार वही होगा कि शुरू का हिस्सा निस्बतन तेजी से गुजरेगा और जो आखिरी हिस्सा है उसके अंदर बहुत सारी बातें आएंगी कि जिसको हम देखेंगे। अब चलते हैं आयतों के साथ, आयत नंबर 53 से। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن, اور آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہی بات کہیں جو بہت اچھی ہو۔ کون کس کو پیغام دے رہا ہے؟ اللہ تعالی نبی کو اپنے بندوں کے لیے پیغام دے رہا ہے۔ پہلے تو خود سے پوچھئے کیا میں خود کو اس پیغام میں شامل سمجھتی ہوں۔ और यहाँ एक और बात भी याद रखिए कि मक्की सूरतों में अहले ईमान को ब्राह रास्त मुखातिब नहीं किया जाता। इसके बरक्स मदनी सूरतों में आप देखते हैं तो या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए लोगो जो ईमान लाए हो, क्योंकि उस वक्त ईमान की निस्बतें वाजे हो चुकी थी। और इसका आगाज किबले की तब्दीली के बाद की आयतों में हुआ। ये बड़ा बारीक नुकता है। जब मुसलमान एक बाकायदा उम्मत वसत के मनसब पर फायज हो चुके थे तो उनको या अय्युहल्लज़ीना आमनु कहकर पुकारा गया, लेकिन उससे पहले अहले ईमान को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत यानी आपके मीन आपके जरिए से पुकारा जाता है, जैसे कि यहां कहा गया। ये भी तो एक अच्छा अंदाज होता है ना, किसी की लाज रखना, किसी के जरिए बात कहलवा देना, ये बात इंसान को मोर केयरफुल करती है। और जब तक आपस में ताल्लुक नहीं बनता तो बस दफा दूसरे के जरिए बात करवाना ज्यादा मुनासिब होती है, ये बात भी यहां से पता चलती है। अब कहो क्या यकुल्लती आसन, अच्छी बातें किया करो। कब अच्छी बातें किया करो, ये कौन सी खुश इखलाकी का सबक सिखाया जा रहा है? तो पहली बात तो ये है कि दीन की तबलीग करते हुए अच्छी बात किया करो। अल्लाह ताला ने सूरत नाहल के आखिर में उदु इला सबीली रब्बी कबिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना कहकर वहां ही बहुत खूबसूरत तरीका सिखा दिया था, लेकिन यहां तो अब इसको आहसन के दर्जे पे फाइज कर दिया कि जब भी तुम ईमान वालों को लोगों को अल्लाह की बात बतानी पड़े तो अच्छी बात करो। यही बात सूरत हामीम सजदा में भी आती है कि वमन अहसन कौलम मिम्मन दआ इला अल्लाह, उससे भी अच्छी बात किसी की हो सकती है या होनी चाहिए जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए। गोया कि तबलीग में खूबसूरत अल्फाज खूबसूरत अंदाज इख्तियार करना चाहिए, लेकिन खूबसूरत अंदाज से मुराद आर्टिफिशियल नहीं है, ऐसे राग लापने वाली बात नहीं, दिल की बात, दर्दमंदी वाली बात, दिल में उतरने वाली बात, हल्की फुल्की बारिश की तरह दिल में रिमझिम करती हुई बात कि जो अगले के दिल की सख्त जमीन को नरम कर दे। सूरत अनकबूत आयत 46 में अल्लाह ताला ने अहले किताब से मामला करते हुए हमें फरमाया कि वला तुजादिलु अहलल किताबी इल्ला बिल्लती ही अहसन, कि अहले किताब से बात करते हुए भी आसन बात करो। तो अब ये बताइए कि मुखालिफीन से बात करते हुए आसन बात करनी है, तो फिर जब मुसलमानों से बात करनी पड़े तो फिर क्या बात करो? जहन्नमी, काफिर, मुनाफिक, खोटे और न जाने क्या कुछ। अल्लाह सुब्हान तआला ने यहां हमें एक असूल दिया कि दीन की बात लोगों को बचाना ऐसे ही है जैसे किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना। आप इमेजिन करिए कि कोई एक नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है, लोग उसको लॉन्च करने से पहले उसके एडवर्टाइजमेंट करते हैं, फिर उसके बाद लोगों को उसके फ्री सैंपल्स देते हैं, फिर पूरी ख्वाहिश रखते हैं कि जो सैंपल दिया जाए उसकी क्वालिटी एक्सीलेंट हो। क्यों? जरा सी गलत बात से कस्टमर का जहन बदल जाता है, ऐसे ही होता है ना, लेते लेते कस्टमर छोड़ देते हैं। बाज दफा आपने भी शॉपिंग के दौरान देखा होगा कि बाज दफा वो जो दुकानदार होते हैं जरा सी गुस्से में आते हैं, झुंझलाहट में आते हैं, चिड़चिड़ी बात करते हैं, छोड़ो लेना है तो लो, देना है तो दो, ये वो, तो फौरन आपका माइंड बदलता है, आप चल पड़ते हैं। तो याद रखिए कि कपड़ा एक नहीं दूसरा ले लेंगे, जूता वो नहीं लिया दूसरा ले लिया, लेकिन जिसने आपकी बात की कड़वाहट और आपके माथे के की तेवरी और तुम मिजाजी से दीन को रिजेक्ट कर दिया, वो किधर जाएगा? सोचने की बात है। दीन का प्रोडक्ट बड़ा खूबसूरत है, आज हम मुसलमानों ने इसको देते हुए केयरलेसनेस इख्तियार कर ली। तुर्श बातें, कड़वी बातें, करने तो करें, चुप करके सुने, खामोश रहें। मैं खुद अपने एक्सपीरियंसेस से बहुत सीखती हूँ कि बार दफा लोग इस तरह की कड़वी बातें करते हैं कि मेरा दिल नहीं करता कि मैं उनकी बात सुन के आगे बोलूं। और बहुत दफा मैंने देखा है जब मैं कभी भी आम लोकल दरसों में जाती हूँ, क्लासरूम का माहौल तो अच्छा होता है, लेकिन जब हम पब्लिक दरसों में जाते हैं तो हर तरह के हालात के लिए तैयार रहना पड़ता है। सबसे ज्यादा मुश्किल तब होती है जब घर वाले ने अपनी दोस्तों को एज अ पार्टी या कोई गेट टुगेदर या ईद के नाम पर बुलाया होता है, हर एक फुल एक्सपोजर के साथ आता है और सुनने नहीं सुनाने आता है, और बातें बातें। एक ऐसी जगह मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, पार्टी थी उनकी, उनको मेरा पता जब चला अचानक एक 2-3 घंटे पहले, मैंने उधर ही जा रही थी तो मैसेज दिया कि अगर आप आ रही है तो प्लीज जरूर आए, थोड़ी देर आए। तो मैंने मना नहीं किया, उधर से होके मैं उधर चली गई। तो जब मैं इधर गई तो भरपूर पार्टी का माहौल था और खाना भी ऑलमोस्ट रेडी हो रहा था। अब मैं जब अंदर गई तो मुझे तो लगा कि ये तो बेचारियां नहीं बात करेंगी, और मुझे पता चल गया कि 3-4 घंटे से आके बैठ के कुरान पढ़ रही थी और सपारे वगैरह हो रहे थे। वट एवर, मैंने दिल में सोचा कि यहाँ बात नहीं करने की, थक भी चुकी हैं और सीटीज दे देंगे, बात खत्म होगी। खैर मैं उनके कहने पे वहां आके बैठ गई। तो जब मैं बैठी तो बिल्कुल मेरे साथ ही एक और सिस्टर थी जो बड़ी उम्र की लगी, तो कहती थी शुरू करें जी, आप शुरू करें। तो मैंने कहा मेरा ख्याल है वो नहीं शुरू करेंगी, वो मैंने उन्हें कहा कि मेरा ख्याल है कि इस वक्त साथी सुनने के मूड में नहीं होंगे। तो मुझे कहती हैं आप जरा इनको सुनानी शुरू करें, ये सब ठीक हो जाएंगी। यानी उनकी मुझे वो टोन भी नहीं अच्छी लगती और मुझे लफ्ज भी अब याद नहीं है। उनकी बात कहने का अंदाज इतना कड़वा था, इतना कड़... एक तो वो मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रही थी कि आप शुरू करें, करें जी शुरू, बस करें करें शुरू, और दूसरी उन साथियों की कह रही थी इनको आप जरा सुनानी शुरू करेंगी ठीक हो जाएंगी। तो मैंने बड़े जितना मेरे साथ कुंजी बोलता ना मैं उतनी आहिस्ता बोलती हूँ, बल्कि चुप भी करती हूँ कि आप बोल लें, आप शौक पूरा कर लेंगे ना जब फिर मैं बोलूंगी। मैंने उनको आहिस्ता से दबी आवाज से कहा कि मुझे सुनानी नहीं आती, मुझे लोगों को सुनाना नहीं आता, मैं तो सीधी सीधी बात करती हूँ। खैर उतने में माइक वगैरह सेट हो रहा था, साथी जो साथ थे वो कह रहे थे, मुझे कहती हाँ आपने ये पुरजे शुरजे भी तो अपने ठीक करने। ये वो मुसलसल मुझे रिजेक्ट कर रही थी मेरी, मुझे मैं, उनको मैं भी नहीं अच्छी लग रही थी कि ये बात क्यों नहीं शुरू कर रही है, इतनी तैयारियां क्या है। खैर किस्सा मुख्तसर, मैंने उन्हें कहा कि सिस्टर आप बात कर लें, आप करें इनको, आपकी बात मुझे लगता है अच्छी है, आवाज अभी माइक नहीं लगा तो ये आपकी आवाज सुन भी लेंगी। कहती मैं तो इनको सुनाती रहती हूँ। उसे मुझे पता चला कि वो भी माशाल्लाह कोई मुबल्लिगा ही थी। किस्सा मुख्तसर, याद रखिए तलवार और छुरी का कट आपकी उंगली में एक दिन लगता है ना, कई दिन तक आप उसकी दर्द महसूस करते हैं। तो जब आप लोगों को दीन की बात करें, अगर आप उनकी इज्जत नहीं करेंगे वो कभी आपकी बात नहीं सुनेंगे। और याद रखिए आपके मुखातिबीन में कोई शहर के बड़े पौश लोग नहीं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं। आप अपने बच्चे की इज्जत नहीं करेंगी तो वो आपकी बात नहीं मानेगा, अपने शौहर साहब की इज्जत नहीं करेंगे तो वो कभी आपकी जुबान से बात नहीं सुनेगा। पहले खुद को मोल्ड करें, नरम करें, कायल करने से पहले माइल करें। हम लोगों के जहन पकड़ना चाहते हैं, पहले उनके दिल पकड़ें। ये जो आसान तरीका है ना, सॉफ्ट तरीका है, पहले नरम करो। जैसे किसान पहले मट्टी को नरम करता है फिर बीज डालता है, सख्त मट्टी में बीज डालेंगे एक भी पौधा नहीं उगेगा। तो लिहाजा अच्छे तरीके से बात करो। और बात भी यही है कि जब तुम अच्छे तरीके से बात करोगे लोगों को समझ आएगी। फिर इसका एक दूसरा एंगल आम तौर पे भी ले लीजिए कि दीन का मामला तो है ही, आपस के मामलात में भी खुश असलूब रहो जाती जिंदगी में। अब ये नहीं कि आप दर्स देने बैठे हुए थे तो ये सारी बातें थी, नहीं। इस आयत का खुलासा क्या है कि गुफ्तगू के दौरान जुबान का दुरुस्त इस्तेमाल करो, वरना होगा क्या, इन्न शैतान यनज़ु बैनकुम, यकीनन शैतान इनके दरमियान झगड़ा डाल देगा। क्यों डलवाता है वो झगड़ा जालिम? क्योंकि इन्न शैतान काना लिल इंसानी अदुव्वन मुबीना, यकीनन शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। दुश्मन की तो ख्वाहिश होती है आपके नुकसान की, तो वो तो खुला दुश्मन है, वो तो झगड़े डलवाएगा। आप नोट कर लीजिए, ताल्लुकात की खराबियां अक्सर 98% जुबान के गलत इस्तेमाल की वजह से होती हैं। अगर आप गोश्त काटते हुए भी सीधी छुरी की बजाय उल्टी साइड से गोश्त काटने लग जाए ना, तो गोश्त जो होता है ना वो खराब हो जाता है, ऐसे चीथड़े चीथड़े हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से हमारे आपस के ताल्लुकात में हमारी जुबान का बड़ा गहरा ताल्लुक है। बस दफा होता कि हम बेतकल्लुफी में अपने दोस्तों के साथ ऐसी बातें करने लग जाते हैं जो उनको चुभ जाती हैं। मजाक कर दिया, कुछ कह दिया, चल कंजूस, चल मोटी, चल छोटी, चल मोट करती हैं। दावतों में, पार्टियों में अक्सर आप देखा करें जब बेतकल्लुफ महफिलें होती हैं तो लोग अपने प्यारी अपनी अपनी प्यारी दोस्तों के साथ किस तरह की बातें करती हैं। हो सकता है दो चार बातें वो बर्दाश्त कर रहे क्योंकि वो भी आपको करती है। याद रखिए एंड ऑफ द डे कोई एक बात उसको चुभ जाएगी और वो दिल में गिरा बांध के जाएगी, और घर जाके फिर वो रोएगी, फिर मियाँ से कहेगी सारा मूड खराब कर दिया मेरा इसने, ये खुद को बड़ा समझती है, ये बहुत खुद पसंद है। और अक्सर आप देखें कैसी बातें वो लोग करते हैं जो खुद को बहुत बड़ा समझते हैं। तो अल्लाह ताला कहता है छुरी इस्तेमाल करते हुए भी तो इस्तेमाल करने से पहले देखते हो ना, तो क्या ये जुबान की छुरी जो तुम्हारे मुंह में है इसको सही इस्तेमाल नहीं करोगे? देखिए किसी ने जुबान से पूछा कि तुम 32 दांतों के बीच में कैसे रहती हो? अगर अपनी जुबान में समझ ले तो ये जो 32 32 दांत हैं ये जुबान के दुश्मन है ना, जरा सी जुबान के दांत के नीचे आ जाती है तो जुबान कट जाती है। तो कहा कि तुम इनके बीच में कैसे रहती हो? तो कहा अपनी नरमी की वजह से, जिधर दांत आता है उधर से मुड़ के इधर आ जाती हूँ। तो नरम दमे गुफ्तगू, गरम दमे जुस्तजू, रज्म हो के बज्म हो, पाक दिलो पाक जू। ये एक अच्छा लीडर होता है। ये चार सिफतें अपने अंदर ले जाएं, आप कमरे में छुप के काम शुरू करें, अल्लाह आपको बाहर ले आएगा। नरम दमे गुफ्तगू, गुफ्तगू का अंदाज नरम, गरम दमे जुस्तजू, अंदर से जोशीले, इंथूसिस्टिक और जो पुरजोश और आइडियाज लाने वाले और इनिशिएटिव। ये नहीं कि किसी ने कहा ही नहीं तो किया ही नहीं, पता ही नहीं चला, यानी अंदर से गर्म होते हैं, पुरजोश, पाक दिल पाक जू। दिल पाक हो दूसरों के लिए, जब दिल साफ होता है ना तो जुबान साफ होती है। याद रखिए, जुबान तो सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव है हमारे दिल का। जिस बंदे के लिए हमारे दिल में मोहब्बत होती है, हमारी जुबान शहद उंडेलती है उसके लिए। समझ नहीं आता डिक्शनरी में कोई से भी मीठा और प्यारा लफ्ज हो कि जो हम उसके लिए लगाएं। और जिसके लिए दिल खट्टा, खुद ब खुद बदगुमानियां और बेकार बातें, तो फिर जुबान भी तलख होती है। बेशक छुपाएं, छुपता नहीं है। अच्छी बात भी करेंगे ना तो चेहरा साथ नहीं दे रहा होगा आपके अल्फाज का, तो लिहाजा अच्छे तरीके से मामले करें। और खास तौर पे आप देखिए, जब आप दीन की तरफ निकलते हैं ना, तो बस लोग मुबल्लिग से इख्तलाफी सवाल पूछते हैं। किसी महफिल में आपसे ऐसा सवाल पूछवा लेंगे कि जो बैठे हुए किसी एक पे चोट पड़े, सोच के जवाब दें। मतलब कोई आपसे आके पूछता है, ये बताएं कि नेल पॉलिश जायज है? अब आप देखते हैं कि नेल, आप शुरू हो गए लेक्चर देने, उसी महफिल में हो सकता है 10 सिस्टर्स ने नेल पॉलिश लगाई हो सकता है उनको लगाने में कोई हर्ज नहीं, उनकी नमाज छुट्टी हुई थी, कुछ भी था। और गुमान कीजिए, जिसको नेल पॉलिश लगाए, देखें कि इसने पहले वजू किया होगा, फिर नमाज वजू किया होगा, फिर नेल पॉलिश लगाई, और घर जाके दोबारा उतार के वजू करेंगी। आप भी बदगुमान होते हैं नेल पॉलिश वालों को देकर। लेकिन अगर आपने वहां एक तकरीर झाड़ दी ना, तो बहुत सारे लोग पलट जाएंगे। तो सारी बात का खुलासा, जिसके बाद आगे चलेंगे, कि आप जुबान को ये सोच कर इस्तेमाल करें कि मेरा एक जुमला लोगों को जन्नत से निकाल कर जन जहन्नम की तरफ ले जाएगा। कोई रास्ते में चलता जाता है ना, तो आप उसको जाते जाते सिर्फ हल्का सा मिस गाइड कर दे कि भाई ये नहीं वो रास्ता है, तो आप देखते हैं कि वो अगर अकल ना इस्तेमाल करे या अगर आप पे यकीन रखे, तो वो पलट जाएगा। तो जब पलटेगा तो जन्नत से उतर जाएगा। तो फिर क्या होगा जब हम इस तरह की तंजिया बातें करें? तो तबलीग में ना तंज, ना ताना, और ना गुस्सा, और ना जोश, और ना जज्बात एक खास हद तक बढ़े हुए। बाज लोगों के मुंह से भी झाग निकल रही होती है, आंखें भी सुरख हो रही होती हैं, रंग भी लाल, कभी कभी हो सकता है आप रो पड़े, आपकी आवाज ऊंची हो गई। ये तो एक जिंदगी की अलामत है। आपने ऐसी उम्मत की बात की कि आपके आंसू निकल आए, आपकी आवाज रिंद गई, ये तो हो सकता है, ये तो नेचुरल है। आहिस्ता आवाज के बीच में जब कभी कभी आवाज ऊंची हो, तो फिर सुनने वाले सोचते हैं कि आज क्या हो गया, इनकी आवाज ऊंची हो गई, इसका तक इनका दर्द इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और अगर आदत ही हो इतना ऊंची चीखने की, तो फिर आपकी बात का कोई असर नहीं होता। और आम लोग क्या कहते हैं, हमने जी सच्ची बात की है, तो फिर सच्ची बात की है लेकिन बुरे तरीके से की है। अल्लाह की बात तो की लेकिन अल्लाह के बताए हुए तरीके से नहीं की, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक नहीं दी। और याद रखिए, झगड़े अमूमन दीन वालों के कब होते हैं? जब हर बंदा अपने बड़े पे झगड़ना शुरू हो जाता है, मेरा लीडर, मेरा बड़ा, मेरे सरदार फुलां पेशवा। तो पर्सनैलिटीज़म जब आ जाता है ना, तो झगड़े होते हैं। अल्लाह कहते हैं सबको छोड़ दो, बस अपने काम करो। और ये अल्लाह के नबी के खिलाफ था कि कबाइल को शीरो शकर कर दिखाया, झगड़ने वालों को किस तरह अल्लाह के नबी ने रखा। तो इकामते दीन के इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मोमिनीन के सामने बहुत सारी रुकावटें हैं। जो मुखातिब होते हैं ना, वो पहले तो जहालत की दलदल में फंसे होते हैं, फिर जाहिलियत के एतिकाद नस्लों से चलते आते हैं, फिर उनको अपने रस्म और रिवाज जान से ज्यादा प्यारे होते हैं, बाद दफा सियासी और माशी मुफादात भी होते हैं कुछ कामों के साथ, फिर गैरत और हमीयत भी होती है। इन सब का वो दिफा कर रहा होता है आपकी दीन की तालीम के मुकाबले में। तो आप उनसे इतनी कुर्बानियां मांगेंगे, तो फिर नरमी से मांगें, तहम्मुल से, बर्दबारी से, बर्दाश्त से, इश्तियाल में नहीं आना। देखिए, अल्लाह के नबी की इसमें सुन्नत मौजूद है। अलग, अभी आज सुबह मैं एक छोटा सा रस्ते में बल्कि पढ़ रही थी, शायद आज की आयत के साथ बड़ा बेहतरीन है, मैं आपको सुना देती हूँ कि हम सबको दीन का क्या मिजाज है। क्योंकि आज हम मुसलमान भी तो छोटी छोटी बात पे, इश्तियाल पे, और मुसलमान गैरों के आगे जाके चीखने लगते हैं। मैं पढ़ के सुनाऊंगी तो ज्यादा बात अच्छी समझ आएगी, बात वैसे आपके लिए नई नहीं है। गजवे तबूक जो खासा 9 हिजरी में हुआ, इसके वाकयात में से एक वाकया ये है कि सफर के दौरान एक मुकाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी गुम हो गई। आपके साहब इसकी तलाश में निकले। एक मुसलमान जो ऑफ कोर्स दिल से मुनाफिक था, वो भी शरीके सफर था। इसका नाम जैद बिन अबिल सुलैद था, जैद बिन लुसैद था, यानी जैद कह लीजिए, इसका नाम जैद था। इसने सहाबे रसूल को इधर उधर जाते हुए देखा तो पूछा, भाई क्या बात है? एक सहाबी ने कहा कि रसूलुल्लाह की ऊंटनी गुम हो गई, हम इसको तलाश कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि सिनेरियो क्या है कि अल्लाह के नबी की ऊंटनी साथी ढूंढ रहे हैं। इस पर जैद ने तंज करते हुए कहा, अरबी की कोटेशन है, अलैसा मोहम्मद यज़म अन्नहु नबीयुन, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने बारे में ये गुमान नहीं है कि वो नबी हैं, और वो तुम लोगों को आसमान की खबरें बताते हैं, और इनका हाल ये है कि इनको ये भी मालूम नहीं कि इनकी ऊंटनी का तन समझ आए कि आसमान की तो खबरें इनको बड़ी हैं और अपनी ऊंटनी की खबर नहीं। दूसरे लफ्जों में इसने क्या किया? तौहीन रिसालत की, नबी को गाली दी। रसूलुल्लाह को जब मालूम हुआ तो आपने फरमाया कि एक आदमी ने कहा है, अब उसका नाम नहीं लिया, इनडायरेक्ट बात की, ये मोहम्मद तुमको खबर देते हैं कि वो नबी हैं और इनका गुमान है कि वो तुमको आसमान की खबरें बताते हैं, हालांकि वो नहीं जानते कि इनकी ऊंटनी कहाँ है। मेरा हाल खुदा की कसम ये है कि मुझे इसके सिवा किसी चीज का इल्म नहीं जो अल्लाह ने मुझको बता दिया है। पहले तो अपनी पोजीशन क्लियर की कि मुझे गैब नहीं पता, और अब अल्लाह ने मुझे बताया है कि ऊंटनी कहाँ है, वो इस वादी में फुलां घाटी में है, एक दरख्त में मोहार की रस्सी उलझने ने इसको रोक लिया है, तुम लोग वहां जाओ और इसको लेकर मेरे पास आओ। अब आपने असल खबर भी दे दी। इब्ने इसहाक कहते हैं कि कुछ लोगों का ख्याल है कि इसके बाद जैद ने तौबा कर ली, शर्म आई ना उसको कि मैंने जो बात कही थी अल्लाह ने वही वही के लिए करके दिखा भी थी। दूसरा कॉल ये कि वो बराबर अपने शर्म में मुबतला रहा यहां तक के मर गया। इस वाके के बाद एक सूरत ये थी कि अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म आता कि जैद शुतमे रसूल का मुजरिम है, यानी रसूल को गाली दी है, इसको फौरन कत्ल कर दो, मगर ऐसा नहीं हुआ। आपने सिर्फ ये बताने पर इक्तफा फरमाया कि ऊंटनी फुला जगह मौजूद है। अब ये जुमला गौर से सुनने का, जिसकी आज हम मुसलमानों को और खास तौर पे मुस्लिम लीडर्स और मुस्लिम मुबल्लिगीन को जरूरत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर जैद को कत्ल करवाते, जोश में आके करवा सकते थे ना, तो सिर्फ एक शख्स का कत्ल होता, यानी आपको गाली देने वाला या आपकी तौहीन करने वाला एक शख्स कत्ल हो जाता। मगर जब आपने खोई हुई ऊंटनी के बारे में सही सही खबर दे दी तो आपने इसके फितने को कत्ल कर दिया, और बिला शुबा किसी शख्स को कत्ल करने के मुकाबले में इसके फितने को कत्ल कर देना ज्यादा अहम है और इससे कहीं ज्यादा मुफीद भी है। किल विद काइंडनेस। वो मर जाता है ना तो उसके कई हामी जो थे वो इस्लाम के खिलाफ हो जाते हैं। आज हम मुसलमानों को इतनी अकल नहीं आ रही, हम कितने लोगों को मरवाते और पिटवाते हैं लेकिन असल बात पे नहीं आते। अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत 54 में, रब्बुकुम आलमु बिकुम, तुम्हारा रब तुमसे खूब वाकिफ है, कौन कितना नेक है, कौन कितना बद है, कौन किस दर्जे का नेक है, कौन कैसा है। वही यश यरहमकुम वही यश युआज़िबकुम, चाहे तो तुम पर रहम फरमाएगा और अगर चाहे तो तुम्हें अजाब देगा। वमार सलना का अलैहिम वकीला, ए नबी हमने आपको इन पर दरोगा बनाकर नहीं भेजा गया। कितना खूबसूरत पैगाम है कि हिदायत को कबूल करना या ना करना हर शख्स का जाती मामला है, उसका जाती इंतखाब है, उसकी पर्सनल चॉइस है। आपका काम इन तक पैगाम पहुंचाना है, आप इनको हिदायत पर लाने के मुकल्लफ नहीं है। यानी डाकिये का काम पोस्ट को पोस्ट बॉक्स में डालना होता है, बाद में कोई उस लेटर को खोले ना खोले, खोलकर उस पे अमल करे ना करे, ये उसकी मर्जी, आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। तो गोया के कहा गया कि किसी के जन्नती और जहन्नमी होने के फतवे ना दो। मुसलमानों की जुबान पर ऐसे दावे नहीं आने चाहिए कि हम जन्नती हैं और फलां दोस्ती हैं, ये अल्लाह का फैसला है, वही इंसानों के जाहिर बातिन उनके हाल मुस्तकबिल से वाकिफ है, लिहाजा जुबान का इस्तेमाल कम करो। कितनी खराबियां हैं ये, क्योंकि बाज दफा होता क्या था कि कुफार की ज्यादतियों से तंग आकर मुसलमानों की जुबान से हो सकता है ऐसे जुमले निकल जाते हो कि तुम तो दोस्ती हो, तुम आग में जाओगे, तुम हमें सता रहे हो। कहा नहीं, नबी का काम दावत देना है। लोगों की किस्मतें इसके हाथ में नहीं है कि वो किसी के हक में रहमत का और किसी के हक में अजाब का फैसला करता फिरे। याद रखिए कि अल्लाह के नबी ने खुद कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन आपकी तरफ बात करके हम सबको सिखा दिया कि तुम अपने आप को बचो, जिसका घर होता है वो उसका फैसला करता है। इसके बाद आप देखिए कि अगली आयतों में अल्लाह ताला कुछ और बातें ऐसी बयान फरमाते हैं जिससे हमें अल्लाह ताला की कुदरतों का एहसास होगा। आयत 55, व रब्बुका आलमु बिमन फिस समावाती वल अर्द, और आपका रब खूब जानता है इसको जो कोई आसमान और जमीन में। क्या कुछ है आसमान और जमीन में, कितना कुछ है, बड़ी छोटी चीजें, फरिश्ते और जमीनों में जितनी मखलूकात है, जानवर है। वलकद फद्दलना बादन नबीहीन अला बादन, और हमने बाज़ अंबिया को बाज़ पर फजीलत बख्शी। अब जाहिर ये आयत एकदम ऐसे लगता है कि बीच में आ गई, लेकिन इस आयत के पीछे एक और बात है। आखिरी से पूरा करके आपसे जिक्र करती हूँ कि वातैना दाऊदा ज़बूरा, और हमने दाऊद को ज़बूर अता की थी। असल में अहले मक्का के एक एतराज का जवाब है, और मक्का वालों का एतराज क्या था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत के लिए क्यों चुना गया। सरदारों को अपनी उम्मीदें लगी हुई थी कि अगर अल्लाह ने अरब में कोई रसूल भेजा भी ना तो हमें चुना जाएगा, लेकिन चुना गया एक यतीम मक्का, दुर्रे यतीम, सहरा का फूल चुना गया। बड़ी तकलीफ हुई उनको क्योंकि छोटे लोग चुने गए, हम बड़े बड़े दावेदार पीछे रह गए। तो अल्लाह कहता है, वरब्बुका आलमु बिमन फिस समावाति वल अर्द, रब को पता है किसको चुनना है, किस में क्या खूबी है, किस में क्या बड़ाई है। याद रखिए अल्लाह ताला किसी को चुनता है ना, उसके पीछे बहुत बड़ी खूबी होती है। अल्लाह के नबी में जो खूबियां थी उस पर तो कोई एतराज कर ही नहीं सकता, और अगर एतराज दिल में उठ जाए तो फिर फिक्र कीजिए अपने ईमान की। लेकिन याद रखिए, इंसान का बहुत बड़ा दखल होता है चुनाव में। बाज दफा खूबियां चुनवाती हैं और बाज दफा आदात चुनवाती हैं और बाज दफा स्किल्स चुनवाती हैं। मैं तो सारी चीजों को जो इधर उधर कर करा के तजुर्बे किए, आपके साथ भी औरों के साथ भी, सबके लिए बात है, इस बात पे दिल की बात जुबान पे आ रही है, जो आखिरी क्राइटेरियन बनाया है ना किसी जगह काम करने वालों के लिए, आखिरी क्राइटेरियन एक लफ्ज है, अवेलेबिलिटी। जो बंदा आपको अवेलेबल है, वक्त पे आता, वक्त पे जाता, वक्त दे सकता, इंथुसिस्टिक भी है, यानी आपके लिए वो मौजूद है, उस वो खोटा भी है ना, आप मेहनत करके उसको खड़ा कर लें, उसके ऊपर अभी गर्द पड़ी भी है ना उसको साफ कर लें, जंग लगा अल्लाह के दर्स। इरम देखिए, माइक नहीं है शायद मेरे हाथ में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बास चीजों से अल्लाह ने खुद ही दूर रखा, दुनिया की और जान माल की, औलाद की और घरदारियों की। क्यों? क्योंकि अल्लाह उनसे अपने काम लेना चाहता था। अगर आपकी जिंदगी में कोई महरूमी है, महरूमी समझते हैं ना, जिसको आप इंसानों की नजर से महरूमी कहे, अल्लाह तो कभी किसी को महरूम नहीं रखता। बस आप माली तौर पर कमजोर है, औलाद नहीं है, अभी शादी नहीं हुई, शौहर पास नहीं है, कई किस्म की है, आप उसको जाके डिपॉजिट करें और उसमें से क्रेडिट निकालें। यकीन करें, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह सुब्हान ताला आपको अपने किसी काम के लिए फारिग करते हैं। इनको नहीं पता था कि अल्लाह के नबी की के चुनाव में हिकमत क्या है, और अल्लाह के नबी की जो डेडिकेशन थी उसका तो कोई अंदाजा लगा ही नहीं सकता। तो अल्लाह कहते हैं कि तुम मेरे साथ कैसे एतराज करते हो। आप जरा सोचिए तो सही, कितनी जुरत की बात है कि अल्लाह को कह रहे हैं कि इसको क्यों चुना, उसको चुना। मिसाल देती हूँ कि आप किसी मुल्क के वजीर के बारे में कहते हैं इसको नहीं चुनना था, देखते ही ना जो हमारे मुल्कों में हालात है, अपने चुनाव पे खुद रोते हैं, अपने ही फैसलों को गलत साबित करते हैं। चलिए किसी सदर को ठीक नहीं चुना, वजीर को नहीं चुना, कर करा के आप उसको निकाल के फेंक देंगे। किसी इंसान ने किसी को चुना, आपके बॉस घर में कुछ ना, आपके शोहर ने कुछ चीज चुन ली आपके लिए, बाद में आपको पसंद है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन एक शख्स, कमजोर बंदा अल्लाह के चुनाव को चैलेंज करे, कितना बड़ा मामला है। और याद रखिए, जिसको आपके ऊपर बड़ा बनाया जाए उसको ना मानना उस चुनाव का इनकार होता है। अल्लाह के नबी का इनकार नहीं था, असल में अल्लाह ताला कहते हैं उनके अपने दिलों का किबर था और बड़ाई का एहसास कभी बंदे को किसी जगह फिट होने नहीं देता। अल्लाह ताला उनको बताते हैं कि देखो, ये कोई पहला नबी थोड़ी था, हमने तो वलकत फद्दलना बादन नबी ना आला बाद, हमने तो बाज को बाज पे फजीलत दी। कहां पड़ी ये बात मिलती जुलती? सब बोले तीसरे पारे की पहली आयत, तिल का रसुल फद्दलना बादम अला बाद। तो अल्लाह कहते हैं ये कोई पहला नबी थोड़ी था, इब्राहिम को खलीलुल्लाह बना दिया, मूसा को कलीमुल्लाह बना दिया, दाऊद को जबूर दे दी, ईसा को बिन बाप के पैदा कर दिया, पहले इंसानियत में से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुना कि उनको मेराज करवाई। पीछे सूरत में चूंकि मेराज का जिक्र था, तो आज के सबक में भी आपको इसके इशारे मिलेंगे, आगे भी जाके मिलती रहेंगी बातें। तो गोया के अल्लाह के नबियों को चुना और फिर नबियों में फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुना, तो तुम इस पर एतराज क्या करते हो? तो गोया कि आप कह सकते हैं सारी बात के एंड पे कि जिन्होंने अल्लाह के नबी को दिल से कबूल नहीं किया, आज वो किधर है? ऐसे लोग खसो खाशाक की तरह बह जाते हैं जो किसी चीज को कबूल नहीं करते। और अंदर की बड़ाई जो होती है ना, वो इंसान को दूसरों के सामने बड़ा बनने पे मायल करती है। इसीलिए अब अगली आयतों में बताया गया, जो यहाँ दाऊद की बात है, आप कहते हैं कि हजरत दाऊद कैसे थे? छोटे कद के थे, और पीछे पढ़ चुके हैं आप लोग तालूत और जालूत के वाक्य में, क्या थे वो? कुछ भी तो नहीं थे, छोटे कद के, दुबले पतले, कमजोर सिपाही थे। अल्लाह की जात ने उनसे काम लेना था, उनके हाथों दुश्मन बादशाह को मरवाया और उसके बाद उनको जमा दिया, आगे कर दिया। लेकिन उनमें और बड़ी खूबियां थी, तो याद रखिए जाहिरदारी भी। किसी इंसान के अंदर जाहरी तौर पे कितनी खूबियां हैं ये मैं और आप जानते हैं, अल्लाह बंदे के अंदर को जानता है। तो लिहाजा दाऊद की यह मिसाल देकर उनको बता दिया गया। इरम आवाज आ रही है मेरे हाथ में? माइक है, चेक कीजिए जी, लिखिए जरा ऑनलाइन पे, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों? अल्हम्दुलिल्लाह, फिर मैं नहीं छेड़ती, ठीक है। तो आगे फरमाया, अगले हिस्से को देखते हैं कि जब नबियों को हमने फजीलत दी, या थोड़ी सी बात सूरत के नाते से भी समझ लीजिए कि सूरत बनी इसराइल मक्की दौर की आखिरी सूरतों में से है, और इसका आगाज भी चूंकि बनी इसराइल की तारीख से हुआ। सूरत के नजूल से पहले नबी सल्लम की बेसत और कुरान के बारे में तमाम खबरें मदीना में पहुंच चुकी थी। यहूद मदीना एक एक बात और एक एक खबर का बारीक बीनी से जायजा ले रहे थे। उनको पता सब था, ये अलग बात है कि अभी अल्लाह के नबी वहां पहुंचे नहीं थे, फिर अन करीब अल्लाह के नबी भी वहां जाने वाले थे। इन हालात में जब मुसलमानों का यहूद के साथ अकायद और नजरियात के बारे में तबादला ख्यालात होना था ना, क्योंकि वो अपने दौर के मजहबी लोग थे, तो ये मुमकिन था कि वो नबी सल्लम से दूसरे अंबिया के फजाइल के बारे में सवाल पूछेंगे कि अच्छा जी, अगर मोहम्मद सल्लम नबी हैं तो फिर आप आला हैं या मूसा आला थे, या अगर मोहम्मद आला हैं तो क्या नबी सल्लम आला हैं तो या ईसा आला थे। यानी ये झगड़े लोग करते हैं। देखिए, जो सीधे साधे लोग होते हैं ना, दुनियादार, वो किसी दीनदार के आने पर शुक्र करते हैं। कोई अल्लाह का बंदा आया, उसने बात सुनाई और पहुंच गए। लेकिन जिधर लोग पहले से थोड़े बहुत दीन पे लगे होते हैं ना, वो किसी नए आने पर फौरन तकाबुल, किससे, किस जमात से, किस ग्रोह से, हम जिससे पढ़ते हैं वो कैसा है, यही झगड़ा था इधर। अल्लाह ताला पहले से बता रहे हैं कि नबी, आपको एक असूली बात बताई जा रही है कि अल्लाह को अपनी मखलूक का पता है, जमीन और आसमान में कौन कैसा है। इसलिए उसने जो बात सूरत बकरा 253 में कह दी थी, तिल का रसुल फद्दलना बादम अला बाद, यहां फिर कह दिया कि जब यहूद मदीना आपसे बहसें करेंगे तो आपने उन बहसों के जवाब में झगड़े नहीं करें, ताकि उनको तासुब का मौका मिले। ये नाजुक मौका होता है, रसूल एक दूसरे पे आला नहीं है, तो बताइए आयमा कराम आज आला और अल्फा कैसे हो गए? आज अगर एक इमाम को मानने वाले दूसरे इमाम के लोगों से झगड़े, या एक उस्ताद से पढ़ने वाले दूसरे उस्ताद की गुनगाने लगे और पहले की बुराई करें, फायदा किसको होगा? शैतान को फायदा होगा। अगली आयतों में अब शैतान की बातें आने वाली हैं, तो अल्लाह ताला हम सबको यहां बताते हैं कि देखो, झगड़ों में पड़ने से कभी दीन का फायदा नहीं होता। खुद अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नबियों के बीच में दर्जा बंदी ना किया करो, और फरमाया किसी शख्स को ये जायज नहीं कि वो यूं कहे कि मैं यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूनुस बिन मता से अफसल हूं, क्योंकि यूनुस अलैहि सलाम वाहिद नबी हैं कि जिनकी अल्लाह के यहाँ गिरफ्त हुई थी दुनिया में, फिर अल्लाह ने उनको माफ किया और उनकी कौम से अजाब को भी टाल दिया। तो लिहाजा अल्लाह के नबी की तारीफ तो करें, तकाबुल ना करें। बात पीछे हो चुकी है तीसरे बारे में। तो इसी के बाद फरमाया अब मक्का वालों के कुछ बुत थे जिनकी वजह से वो अल्लाह के नबी को नहीं मानते थे। आयत 56, कुलेदुल्लज़ीन नज़ाम तो मिन दूनी, आप कहिए। आप नोट कर रहे हैं कि इधर हर आयत कुल से शुरू हो रही है, अल्लाह के नबी को कहा जा रहा है कि आप कहें। कितना खूबसूरत अंदाज है। और अल्लाह के नबी जब ये आयतें पढ़ते होंगे तो क्या कहते होंगे, जी अल्लाह मैं भी इनको कहता हूँ। ये बिल्कुल ऐसी है कि जैसे मैं आपसे कह दूं कि जरा ये बात जाके नीचे कह आए। तो जब किसी को कोई मैसेज मिल जाता है तो उसके बाद दिल चाहता है ना कि फौरन बात की जाए। तो यहाँ मोहब्बत का अंदाज भी है। अच्छा, दाऊद की जबूर की बात हुई थी तो नोट कर लीजिएगा, जबूर में 114 नज्में थी, यानी राइम्स थी, पोइम्स थी, जिसको हम कह लें, छोटी सी बुक थी, 114 पोइम्स थी। आज कुरान में कितनी सूरतें हैं? 114। वो सिर्फ पोएम्स थी, और कुरान की 114 सूरतों में क्या है? दुनिया जहान का खजाना भरा हुआ है। तो कहा कुलिदुल्लज़ीन ज़ाम तो मिन दूनिही, आप कहिए इनको पुकार देखो जिनको तुम इसके सिवा गुमान कर रखा है, जिनको तुमने इसके सिवा माबूद गुमान कर रखा है। फला यमलिकून कशफ दुर्रियनकुम, तो ना तो इन्हें कुछ इख्तियार हासिल है कि तुमसे कोई तकलीफ दूर करें। वला तहवीला, और ना ही तुम्हारी हालत को बदलने का। बड़ा खूबसूरत अंदाज है किसी के शिर्क को चैलेंज करने का, क्योंकि जिनको तुम पुकारते हो वो कैसे हैं? अगली आयत साथ ही चलती है, 57, उलाइकल्लज़ीना यदउना यब्तगूना इला रब्बिहिमुल वसीला, ये वो लोग हैं जिन्हें ये पुकारते हैं वो तो खुद अपने रब के कुर्ब के मतलाशी हैं, कि इनमें से कौन, अय्युहुम अक़रबू, कि इनमें से कौन ज्यादा करीब है उसके। और वह यरजूना रहमतहू, और वो तो उम्मीदवार है उसकी रहमत के। और तीसरी खूबी, वह यखाफून आज़ाबहू, और वो उसके अजाब से डरते रहते हैं, क्योंकि इन आज़ाब रब्बिक का न महज़ूरा, आपके रब का अजाब है ही डरने के लायक चीज। मक्का वालों ने कुछ बुत बनाए हुए थे, अल्लाह की मोनस थी, मनात अल्लाह के नाम अल मनात की फीमेल थी, उज्जा अल्लाह ताला के नाम अल मन्ना अल अजीज की तानीस थी, और इनके सामने जाते थे और इनको पुकारते थे और इनसे पूछते थे। यहाँ लफ्ज देखिए जाम आया है, जाम गुमान को कहते हैं, मशकूक बात, यानी तुम उर्दू में हम कहते हैं ना तुम्हें किस बात का जोम है, तो झूठी बात भी मशकूक बात भी जोम वाली बात होती है। मलाइका को, कोई पैगंबरों को, कोई औलिया कराम को, कोई मरे हुए बुजुर्गों को पुकारते थे। अल्लाह कहते हैं पहली बात तो बताओ क्या वो कशफ दुर्री अनकुम कर सकते हैं, तुम्हारी तकलीफ को दूर कर सकते हैं। और दुर कहते हैं जिस्मानी तकलीफ को, भूख और मरस तीनों के लिए आ जाता है। क्या ये तुम्हारी भूख दूर कर सकते हैं? क्या है दूर होता है? क्या बीमार हो तो बीमारी दूर करते हैं? चलो बोला तहवीला, क्या तुम्हारे हालात बदल सकते हैं? तहवील का जो लफ्ज है ना हॉल से है, ये जो लफ्ज है ना मा हॉल, वो भी यही है, हाला यहूलू हॉलुन, ठीक है, फेरने के मानों में, किसी के हालात को बदल देना, कि तुम्हारे सरकमस्टांसेस चेंज कर सकते हैं? कोई कर सकता है? कोई बुत कर सकता है? कोई इंसान कर सकता है? फरमाया बल्कि ये तो उलाइकल्लज़ीना यदउना यब्तगून इला रब्बिहिमुल वसीला, जिनको तुम वसीला बनाते हो वो तो खुद अल्लाह को वसीला बनाते हैं। इन बुजुर्गों ने दीन में मेहनतें इसलिए ना की थी कि इनको शोहरत मिले, बल्कि इन्होंने अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए मेहनतें की थी। क्या पता चला आपको इस आयत को पढ़कर कि ये वो लोग हैं जिनकी सारी जिंदगियां खुद अल्लाह को पुकारने में गुजरी। तुम भी अल्लाह को पुकार लो, तुम वो मेहनत तो नहीं करते जो इन्होंने की थी, और तुम उनके पल्लू पकड़ना चाहते हो। देखिए सूरह फातिहा से ये टॉपिक चल रहा है, सिरात अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, अल्लाह रास्ता दिखा उन लोगों का जिन पे तेरा इनाम हुआ। ये तो नहीं कहा कि अल्लाह हमें उन लोगों का पल्लू पकड़ा दे जिन पे तेरा इनाम था और हम उनको लेके चलते रहे। फिर हमने सूरत आले इमरान में ये बात पढ़ी, जब बीबी मरियम के पास बिन मौसम के फल देखे हजरत जकरिया ने तो क्या किया, खुद रब को पुकार लिया कि अल्लाह जब तू उनको बिन मौसम के फल दे सकता है तो मुझे भी दे सकता है। तो हम होते तो बीबी मरियम से दुआ कराने लग जाते हैं। तो देखिए वसीले का शिर्क बड़ा मारूफ शिर्क है। इस तरीके से आज इंसानों को लूटा जा रहा है, जिसको मैं कह सकती हूँ कि लूटा जा रहा है कि अल्लाह के बनने के बजाय अपना बनाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे ट्रिप के अंदर जो बहुत कुछ और अल्लाह ताला ने छोटे छोटे काम कराए, उसमें एक बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव काम जो था वो एक इंडियन फैमिली के साथ हमारा तकरीबन 2-2.5 घंटे का सेशन था। हिंदू थे, हिंदू फैमिली है, यानी शौहर और बीवी थे। यानी मैं आपको बता नहीं सकती कि वो कितना प्रोडक्टिव मैसेज था और कितना उसका फायदा हुआ कि उठते हुए वो ब्रदर ये कह के गए कि आज का दिन मेरी जिंदगी का बड़ा अहम दिन है, बहुत सारे फैसले होंगे, बहुत कुछ होगा। और लंबी कहानी है, रिकॉर्ड किया तो थोड़ा सा हमने, उनका असल मर्ज यही था कि एक बुजुर्ग है जिन्होंने एक धर्म बनाया हुआ है जिसमें कोई मसला नहीं, हिंदू ईसाई यहूदी कोई भी हो, कहते वो धर्म की बात ही नहीं करते, बस वो कहते सब आ जाओ, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, जैसी बातें वो करते हैं वैसी बातें आप भी कर रहे हैं। तो फिर जब उनको दरख्त बना के बताया कि वो तो सिर्फ इखलाक सिखाते हैं, वो तो अपनी पूजा कराते हैं, लोग उनके हाथ चूमते हैं, उनके पांव चूमते हैं, उनके कपड़े इस्त्री करते हैं, उनके लिए खाने पकाते, उनको अपने लिए बहुत बड़ा समझते, लेकिन ना उस दिन में नमाज है ना रोजा है। किसा मुख्तसर ये कि जो मैंने आज फील किया है, आज मुसलमान जैसे मुसलमान नहीं रहे ना नाम के, जैसे हम मुसलमान हैं तो मुसलमान, लेकिन मुसलमानों के अकायद या इस्लाम के अमली अकायद से हम दूर हैं। इस वक्त हिंदू ईसाई यहूदी जो तीन मारूफ मजहब हैं, बाकी भी होंगे, मैंने इनके भी करीब जाके देखा है कि हिंदू भी आप बहुत सारे नाम के हिंदू हैं लेकिन वो किसी और शख्सियत परस्ती में खो चुके हैं। ईसाई हजरत ईसा के अकायद को छोड़ के एथियस बन चुके हैं और यहूद तो अपने दीन पर बात ही नहीं करते। यकीन करें ये मौजू इतना अहम है, इतना अहम है कि लोग किसी ना किसी शख्सियत के सहर में मुबतला है। उन्हीं की तस्वीरें वेबसाइट से खोल के उनको बताया कि जो कुछ आप इन बुजुर्ग के लिए कर रहे हैं ये तो हमारे हमें अपने नबी के साथ भी इजाजत ना मिली, और आपका ये गुरु मर जाएगा तो आपको चंद साल बाद फिर गुरु ढूंढना पड़ेगा। ये बात उनके दिल को बहुत लगी कि उसको गुरु बनाए जो मरे ना, जो फौत ना हो, जो हमेशा रहे, और आपका भी वही गुरु जो आपके बच्चों का भी गुरु। तो बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये कि दुआ करते हैं और इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि बहुत अच्छी खबर सुनेंगे किस तरीके से लोग आज, और इतने अच्छे लोग, डिसेंट लोग, अखलाकी एतबार पे आला तरीन लोग, पढ़े लिखे लोग, लेकिन इंसानों की खुदाई में आए हुए। तो अल्लाह कहते हैं कि तुम इनका कुर्ब नहीं ढूंढो, अल्लाह का कुर्ब ढूंढो। सूरह मायदा आयत 35 में भी हम वसीले पे बात कर चुके हैं, वसीला एक जगह भी है, जन्नत का आला तरीन मकाम जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया जाएगा। इस दुनिया में अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह के यहाँ अपने दर्जों को बढ़ाने की फिक्र में रहते हैं, थोड़ी सी नेकियां करके सो नहीं जाते, कुछ दिन नेकी करके फिर बैठ नहीं जाते, हर थोड़े दिन बाद उनको आराम नहीं चाहिए। उनकी जिंदगी तो माल बढ़ाने में होती है, वो वीकडेज और वीकेंड का फर्क नहीं रखते, वो ये नहीं कहते कि बस अब ऐश करो मौज करो, बल्कि उनको फिक्र क्या होती है कि जो वक्त की करेंसी हमारे हाथ में उससे कुछ ना कुछ नेकी कर लें ताकि अल्लाह का कुर्ब मिले। और ऐसे लोग फिर वाकई मेहनत करते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम अपनी शख्सियात को और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को आमने सामने रख के देख लो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि किसकी बात सच्ची है। और इस आयत से एक और बात भी पता चलती है कि जो नेक बुजुर्ग थे, अल्लाह के नेक बुजुर्ग थे, वो उनमें ये चार खूबियां लाजमी थी। उन्होंने अल्लाह का कुर्ब भी हासिल किया, मेहनत की, परेशानी का इजहार किया, फिर उसके बाद ये कि वो अल्लाह की रहमतों की उम्मीद में नेकियां करते थे और वो अल्लाह के खौफ से भी डरते थे, उनके दिलों के अंदर सुकून होता था, इत्मीनान होता था। और यकीन कीजिए कि ये इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है कि दुनिया की सारी चीजें इस पे हैच है कि जब आपको अल्लाह का कुर्ब मिल जाए। आप सोच रहे होंगे कि ये जो लोग अल्लाह का कुर्ब हासिल करते थे, अय्यू हम अकरब, कौन अल्लाह के करीब है, जब एक इंसान को अल्लाह का कुर्ब मिल जाता है ना तो क्या होता है? सबसे पहली चीज कि उसका दिल मुतमईन होता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मईन्नुल कुलूब, जान लो कि अल्लाह की याद से दिलों को सुकून है। कहते हैं कि तीन मौकों पे अपने दिल को ढूंढो, अगर दिल ना लगे ना वहां तो मान लो कि जिसम में दिल नहीं पत्थर है, उसमें से एक कुरान की महफिल, दूसरा जिक्र की महफिल यानी जब तुम अल्लाह को याद करते हो, और तीसरा तन्हाई में। जिसको तन्हाई अच्छी नहीं लगती, हर वक्त महफिल है, हर वक्त घूमना फिरना ये वो, तो समझे कि दिल मुर्दा है। और ये जो अंदर का सुकून होता है ना, ये हिदायत पर होने की निशानी है। गुनाहों से कभी दिल को खुशी नहीं मिलेगी, बातिल से जुल्म से कभी सुकून नहीं मिलता। बंदे मोमिन का दिल हर वक्त अल्लाह के साथ होता है, अकरब, अल्लाह मैं आपके करीब हूं कि नहीं, होश हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह, कोई चीज अजीब देखी तो सुभान अल्लाह, डर आया गुनाहों से तो अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह को उसकी पूरी अजमतों से पा लेता है एक बंदा जब उसको अल्लाह का कुर्ब मिल जाता है। हमें तो बाज़ दफा अल्लाह का नाम लेते हुए भी शर्म आती है कि लोग कहेंगे ये बड़ी अल्लाह वाली हो गई, हमने अपनी रूह को मादी चीजों के साथ खुश करना चाहा, हालांकि रूह को अल्लाह की याद से खुशी थी। बाज़ दफा बड़ी बड़ी गाड़ियों पर बैठने वाले लोग भी दुखी देखे गए, बड़े बड़े ओहदों पे मामूर, आला खाने खाने वाले, उम्दा लिबास पहनने वाले लोग सुकून की नेमत से महरूम। हकीकी खुशियों की जगह मस्नूई खुशियां। असल खुशी क्या है कि एक बंदा अल्लाह का कुर्ब पा ले, और दुआ कीजिए कि ये कुर्ब हमें मिल जाए। जितना ज्यादा अल्लाह सुबहाना ताला का कुर्ब हमारी जिंदगी में आएगा उतना सुकून मिलेगा। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत 58 में, इसी की कंटिन्यूशन है, वहीं मिन करियतिन इल्ला नहनु मुहलिकुहा। मुराद क्या है? हर बस्ती नहीं में बात की गई है ना, है हर बस्ती। कैसी? मुहलिकुहा, हम इसको हलाक करने वाले हैं, यानी वी विल डू इट, हम इसको करेंगे, करने वाले हैं। किसको? कैसे? कबल यौमिल कियामा, कियामत से पहले, यानी हर बस्ती को हम कियामत से पहले जरूर हलाक करेंगे। औ मुअज्जिबुहा अजाबन शदीदा, या फिर इसको अजाब देंगे बहुत ही शदीद अजाब। इशारा है उस बड़ी तबाही की तरफ जो कियामत से पहले इस दुनिया पर आने वाली है। सूरत कहफ की दूसरी आयत में हम पढ़ चुके, लियुनज़िरा बासन शदीदम मिन लदुन्हु वयुबश्शिरुल मोमिनीन। और सूरत बनी इसराइल और सूरत कहफ का जोड़ा शुरू में आपसे जिक्र किया था, तो गोया के पता क्या चलता है, कियामत से पहले दुनिया में एक बहुत बड़ी जंग होगी। अगर आपको अलामत कियामत का बयान जो हमने कोर्स किया था तो उसमें टॉपिक याद होगा जिसमें जंगों का बयान था, तो मुलहमतुल उज़्मा, बहुत बड़ी जंग की पेशन गोई है जो दुनिया में होगी। मुफस्सरीन कहते हैं कि इधर उसका जिक्र है कि दुनिया में ऐसी जंग छिड़ेगी, कोई कहता है ये एटमी जंग है, कोई कहता है न्यूक्लियर वेपन्स होंगे, कि ऐसा सानहा जब आएगा तो दुनिया सारी की सारी खत्म होती हुई दिखेगी। और का काना ज़ालिका फिल किताबी मस्तूरा, ये अल्लाह की किताब में लिखा हुआ है, यानी क़यामत से पहले दुनिया में इतनी जंगे होंगी कि सब समझ आ जाएगा। और याद रखिए, बस्तियां कब तबाह होती हैं? जब वहां इस्लाह का काम खत्म हो जाता है, जब बुराइयों से ना रोका जाए, और जब लोग गुनाह तो करते हैं लेकिन इस्तिग़फ़ार करना छोड़ देते हैं। पता क्या चला इस आयत से कि या तो तबई मौत पे कुछ बस्तियां मरती हैं और बाज़ अजाबों से मरती हैं, बाज़ जगह जलजले आ जाते हैं, बाज़ जगह बॉम्ब खिराए जाते हैं, बाज़ जगह रॉकेट लॉन्चर गिराए जाते हैं। ये अल्लाह की सुन्नत है कि जब लोग अल्लाह की बात नहीं मानते तो यही हाल है। पिछली आयत के साथ इसको मिला के देख लीजिए, अल्लाह कहता है मेरा अजाब क्या है, महजूरा, हजरा से डरने की चीज, तो खुद भी डरो और लोगों को डराओ। पहले तो इनफरादी अजाब आता है ना, फिर इज्तमाही अजाब आते हैं। सूरत आल इमरान में हम पढ़ चुके, वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सा, और अल्लाह तुम्हें अपने अपनी जात से डराता है, कहीं फरमाए फत्तकूनी, मुझसे डरो, फाहज़ुरूनी। तो हम सब अल्लाह के इस अजाब से कितना अपने आप को महफूज समझते हैं, कि हम सब खुद से पूछें। इसलिए कि अल्लाह ताला कहते हैं कि जब नेमत मिले और नेमत को पाकर भी लोग अल्लाह का कुर्ब ना पाएं तो ये अल्लाह के अजाब की पहली किस्त है। इसीलिए अब अगली आयत में बताया, जिसका खुलासा क्या है कि लोग क्यों नहीं मानते। फरमाए वमा मना नुरसिल सॉरी वमा मना अना नुरसिला बिल आयाती, और हमें नहीं रोका, यानी किसी और बात ने हमें नहीं रोका, इल्ला सिवाय इस बात के। अन कज़ब बिहल अव्वलू अन नुरसिल बिल आयाती, कि हम निशानियां भेजें। इल्ला अन कज़ब बिहल अव्वलून, सिवाय इसके कि इनको झुटलाया था पहले लोगों ने। आप आगे भी पढ़ेंगे सूरह बनी इसराइल में कि मक्का का ये वो दौर था जब मोजज़े मांग रहे थे लोग, ओहद पहाड़ सोने का हो जाए, सफा पहाड़ सोने का हो जाए, मदीना में कुएं निकल आए या चश्मे फूट पड़े। अल्लाह कहते हैं हमारे लिए क्या मुश्किल है। मोजज़ों की तलब के जवाब में यह आयत उतरी थी कि मोजज़े भेजना क्या मुश्किल है, लेकिन हम क्यों नहीं भेजते? क्योंकि जब पिछलों के पास निशानियां आई थी तो उसको देख कर भी नहीं माने थे। पीछे पढ़ चुके हैं हम, सूरत अनाम में पढ़ चुके हैं कि ये बात कही कि बात ही ना समूदन नाका, हमने तो समूद को उठनी दी थी, मोबसीरतन आंखें खोल कर देने वाली, आंखें खोल देती वो निशानी, लेकिन फजल मुंह भी हाँ, मगर उन्होंने इसके साथ भी जुल्म किया। याद है आपको ऊंटनी के साथ क्या किया? तो मक्का वालों, तुम्हें भी कोई निशानी मिल गई तो तुम भी वही करोगे जो पिछलों ने किया, ऊंटनी को मार दिया, हजरत साले के दुश्मन हो गए। हजरत ईसा को मट्टी से जिंदा परिंदे बनाने का अल्लाह ने हुक्म दिया, कुम बिस्मिल्लाह, कहते तो वो खड़े हो जाते। लेकिन बताइए क्या इन मौजों को देख के लोग ईमान ले आए थे हजरत ईसा पे? कोई नहीं लाता। याद रखिए, जिसको मानना है वो मानेगा, जिसको आना है वो आएगा, जिसको हिदायत की तड़प है वो तो रींगता हुआ भी आएगा, तड़पता हुआ भी आएगा, और जिसके अंदर अभी तलब भी नहीं, अभी भूख नहीं, वो हालात देखेगा फिर आएगा, मौका महल के साथ बात करेगा। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ना देकर तुम्हें अजाबों से बचा लिया, वमा नुरसिलु बिलायातिल्ला तखवीफा, और हम नहीं भेजते निशानियां मगर सिर्फ डराने के लिए। यानी निशानियां सिर्फ एक ड्रावा होता है। आपको पता है कि लफ्ज निशानी के अरबी में 6 मानी है, उधर से एक माना इधर समझ आ रहा है कि निशानी तो ऐसी है जैसे डांट, जैसे आप बच्चे को मारना चाहते हैं, भला कोई माँ या बाप ख्वाहिश रखती है कि बच्चे को कूटे पीटे? नहीं रखती ना। तो कभी ऊंची आवाज से बोलते हैं तो क्या मकसद होता है? तख्वीफा, बच्चा डर जाए, काम करना छोड़ दे। तो अल्लाह ताला ऐसी चीजें कर करा के दिखाते हैं कि तुम अपने आप को बचा लो। कुरान का मकसद लोगों को वॉर्न करना है। इसके बाद अब आप देखेंगे कि अगली आयत में यही बात 3 मिसालों से साबित की गई है कि जो लोग कुरान की आयतों के साथ बहस बराए बहस का रवैया रखें, इनकार बराए इनकार का रवैया रखते हैं, तो अल्लाह ताला इनको फिर हिस्सी मौजजे नहीं दिखाता, जैसे आज के दौर में नहीं आ रहे ना, क्योंकि खत्म हो गया वो दौर। तो अगली 3 आयतों में देखेंगे किस तरह से अल्लाह ताला इसमें हमें दिखाते हैं। वइस कुलना, और जब हमने कहा, लका आपको, वही अंदाज है ना, बीच में अल्लाह के नबी हैं, इन्ना रब्बका अहाता बिन्नासी, और जब हम आपसे कहते हैं कि आपके रब ने लोगों का इहाता किया हुआ है, कैसे किया है, कहाँ किया है? सूरह बुरूज आयत 20 में अल्लाह ताला कहते हैं वल्लाहु वल्लाहु मिन वराइहिम मुहीत, कि अल्लाह लोगों का को घेरे हुए, अल्लाह को ने लोगों का इहाता किया हुआ है, यानी अल्लाह ने लोगों को घेरा हुआ है, सराउंड किया हुआ है। इसी तरह गालिबन सूरह बुरूज की आयत, सूरह बुरूज नहीं, सूरह मुतफ़िफ़ीन की आयत है कि इन्ना रब्बक लबिल मिरसाद, लोगों तुम्हारा रब तो तुम्हारी घात लगाए हुए। तो अल्लाह कहते हैं कि नबी, हमने आपको बता दिया है कि हम लोगों से गाफिल नहीं हैं, हमने लोगों को घेरा हुआ है हर तरफ से। ये लोग जब ऐसी आयतें सुनते हैं तो डरने की बजाय फजूल बहसों में पड़ जाते हैं, हालांकि अल्लाह इनके हर अमल को देख रहा है। जालना रोयल्लती, ये दूसरी बात है, और नहीं बताया हमने इस मुशाहदे को, अल्लती आ रही ना का, जो हमने आपको दिखाया था, इशारा है मेराज की तरफ। क्यों? इल्ला फितना तलिन्नास, मगर एक फितना लोगों के लिए। देखिए यहां लफ्ज रोया आया है, ख्वाब के मानी में नहीं, बल्कि इससे मुराद है रोयते बसरी। रोयत का मानी कहता है देखना, टू सी, बसरी आंख से। इंसान अपनी आंखों से जो कुछ देखता है उसको भी रोया कह दिया जाता है। इशारा है शबे मेराज में अल्लाह के नबी को जो मुशाहिदात कराए गए थे उनकी तरफ। जब अल्लाह के नबी ने वो निशानियां जो वहां देखी थी उसकी तफसील मक्का वालों को बताई, तो मक्का वालों के लिए तो फितना ही बन गया। वो ना सिर्फ खुद इसके मुनकर हुए, बल्कि इसकी बुनियाद पर वो मुसलमानों को उनके दीन से दूर करने में लग गए, और वाकये मेराज को बुनियाद बनाकर उन्होंने पूरे जोरों शोर से इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगंडा शुरू किया, और लोगों को ये साबित करवाना शुरू कर दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुनून है, जिन चमट गया। इस जमाने में जब मक्का से बैतुल मकदस पहुंचने में तकरीबन 15 दिन लगते थे, तो ये दावा नाकाबिले यकीन मालूम होता था कि कोई शख्स रातों रात सिर्फ फे की रात में बैतुल मकदस के आसमानों तक होकर आ गया, तो मक्का वालों ने इस मौके को गनीमत जाना, इस मौजू को उछाला और मुसलमानों से बढ़ चढ़ कर बहस मुबासे किए। और इस तरह ये बात ना सिर्फ ये कि कुफार के लिए फितना बन गई बल्कि मुसलमानों के लिए भी बन गई। और आपको पता है कि वाकई में आज के बाद कई लोग इस्लाम से हट गए थे, दुख के साथ कह रही हूं। आम हालात में बहुत सारे लोग दीन पे जमे रहते हैं, 19-20 की चेंज आती है ना तो हट जाते हैं, ये लोगों के अंदर की कमजोरी होती है। अच्छा जी, ये तो फिर ठीक ही नबी नहीं होगा, जो लोग देखो कहाँ चल पड़े, वहां चले गए। अच्छा, ये तो फिर नाउस बिला कोई बात ही होगी। ये वही वक्त था कि जिस वक्त अबू बकर सिद्दीक सिद्दीक बने, कि जब उन्होंने कहा कि जब वो ये कहता है कि मेरे पास हर रोज फरिश्ता आता है, तो हमने उसका दावा तस्लीम किया ना, तो हम ये मानने में क्यों इनकार करें कि वही फरिश्ता रातों रात उसको आसमानों की सैर करा दे। तो वो तो सिद्दीक अकबर बन गए, लेकिन कई कच्चे पक्के हट गए। तो हाँ कीजिए, अल्लाह पक्का कर दे। देखिए, बहुत बड़ा फितना है कच्चे पक्के लोगों को। असल में आखिर में वही लोग जन्नत में पहुंचेंगे जो दिल से ठुके हुए मुसलमान होंगे। इसीलिए अल्लाह ताला कहते हैं वश्शजरतुल मलऊना फिल कुरान। अब ये तीसरी चीज है जो तीन निशानियों की बात थी इस आयत में, और इस दरख्त को भी जिस पर कुरान में लानत वारिद हुई। ये कौन सा दरख्त था? जक्कूम का दरख्त है। सूरह साफ़ात आयत 64 में हम पढ़ेंगे कि जन्नत जहन्नम में एक दरख्त होगा, जहन्नम की जड़ है और उसकी तह में दरख्त होंगे। तो जब ये बात वहां पहुंची लोगों के लिए, तो लोगों ने मजाक किया, कहने लगे अच्छा जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जहन्नम के अंदर दरख्त होंगे, भाई कभी तुमने आग में भी दरख्त जलते देखे? ख्याल क्या था कि अगर दरख्त होगा तो जल जाएगा, लेकिन उन्होंने उस दौर में माइक्रोवेव ओवन नहीं देखा था। कौन सी आग होती है माइक्रोवेव ओवन में? हेलोजिन ओवन में कौन सी आग होती है? तो चीज पकती है कि नहीं पकती? तो जब दुनिया में बगैर आग के चीजें पकने लग गई, तो क्या जहन्नम की आग में सब्ज दरख्त नहीं हो सकते? तो अबू जहल जैसे लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया था। जब कहा गया कि जहन्नम में थोर का खाना होगा, तो अंदर गया, मक्खन और जैतून मिलाकर खाने लगा, तो कहने लगा खाओ खाओ, यही है वो खाना जिसकी मोहम्मद बातें करता है नाउज़ुबिल्लाह। तमस्खुर, टोटके, शोशे। और याद रखिए, ये अल्लाह के नबी की महफिलों में बैठ के नहीं करते थे, ये साइड की महफिलों पे और टॉक्स में करते थे। ऐसी बातें अल्लाह को तो पहुंच जाती थी ना। अल्लाह ताला कहते हैं वनुखव्विफुहुम, हम इन बातों से तो फिर इनको खौफ दिलाते हैं, तंबीह करते हैं, लेकिन फमा यजीदुहुम इल्ला तुग्यानन कबीरा, मगर ये तंबीह इनकी सरकशी ही में इजाफा किए जा रही है। जितना समझाओ उतना ही दूर, जितना डराओ उतना ही ना डर। अब देखिए, जब अंदर ठीक हो जाता है ना, तो कोई रोता है तो वो हंसता है, कोई डराता है तो वो आगे से ढीला हो जाता है। ऐसी बातें सुन के भी बाज लोग और ज्यादा मुस्कुराते हैं, जेरे लब मुस्कुराते थे, ये कैसी बातें करते हैं, इनको समझ ही नहीं, ये ऐसी बातें, ये है और वो है, दिस सेट दैट करने वाले। तो अल्लाह की जात फरमाती है कि तुम जो भी कहते हो इनको बता दो, अल्लाह के लिए कुछ हुआ। अब यहाँ पे बात पूरी हुई, आगे मौजू बदलेगा, हम ब्रेक के बाद लेंगे इंशाल्लाह उसको, लेकिन यहाँ एक छोटी सी बात है जिस पे एक बातिल नजरिया शुरू हो गया, उस पे बात करूंगी। आयत 60 में आया था वल्लाहु मिन वराइहिम मुहीत। आप इस आयत को कैसे समझे? कि अल्लाह ने इन सबको घेरा हुआ है, बात सच है ना? अब आप मुझे बताइए, क्या इस लफ्ज से अल्लाह ताला के हर जगह हाजिर और नाजिर होने का नजरिया निकलता है? कुछ लोगों ने फलसफे की रोशनी में पढ़कर और न जाने किसके अवतार और किसको किस तरह करके, पैंथिज्म एक नजरिया है, हमा उस्त कहते हैं उसको फारसी में। वो नजरिया क्या है? वो कहते हैं ये पूरी कायनात जो है ना, नाउज बिल्ला, ये खुदा है, और हर एक ने जो रूप धारा हुआ है ना, ये अंदर में अल्लाह। आपने हलूल का नजरिया सुना, लफ्ज अवतार सुना? अवतार क्या होता है? जैसे सूरज देवता का अवतार कहते थे फिरौन को, कहते थे कि असल में सूरज जो है ना, सूरज है वो जमीन पे फिरौन के रूप में आया हुआ है, यानी फिरौन अंदर से सूरज है और बाहर से फिरौन है, इसको कहते हैं अवतार। हिंदू धर्म में ये बहुत आम लफ्ज है, फला उसका अवतार। अवतार भी कह लीजिए रूप, जैसे मैं आपको किस तरह समझाऊं कि असल सूरज तो जमीन पे नहीं आता, तो उसकी कोई डमी ला के बना दे, कह दे कि ये देखे ये सूरज की एक शिबी है, शिबी कह ले अवतार को। कुछ लोग इस किस्म की आयतों को लेकर साबित करते हैं कि देखो वल्लाहु वल्लाहु मिन वराइहिम मुहीत, तो इससे पता क्या चलता है कि हर चीज को अल्लाह ने घेरा हुआ है, तो नौजबिल्ला हर चीज में अल्लाह। जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उस दरख्त के पास से जो पुकार मिली थी वादी यतीम में, वो कहते वो दरख्त के अंदर नौजबिल्ला खुद खुदा था, और वो दरख्त ने जब कहा था कि इन्नी अन अल्लाह, तो बहरहाल ये एक बातिल नजरिया आज के दौर में ऐसे बहुत लोगों को माइल करते हैं लोग, क्योंकि होता ही है कि ऐसी बातें जरा बहुत इंटेलेक्चुअल लगती है, मैं भी करने लग जाऊंगी ना तो आपके कान खड़े हो जाएंगे, फिर आप कहेंगे वाह ये तो बात कभी नहीं सुनी। तो ऐसी बातें जो दूर की कौड़ियां होती हैं ना, ये बाज दफा कुरान सुनने से दूर ले जाती हैं। हम इसको कैसे समझेंगे कि अल्लाह ने उनको घेरा हुआ है? अल्लाह आसमान पे, सातवें आसमान पे, अर्श के पास, अल्लाह ताला का वजूद वहां है, लिख लें ये बात, वजूद से अल्लाह वहां है, लेकिन अपने इल्म अलीम होने के नाते, समात समीम होने के, बसीर होने के नाते, वो दुनिया के कोने कोने को जानता है, यानी अल्लाह की सिफात इतनी बड़ी है कि वहां होके भी वो हमें देख रहा है, जानता है, सुनता है। ये जो लफ्ज है ना अल्लाह हाजिर और नाजिर है, ये दुरुस्त जुमला नहीं है एक खास एंगल से अगर इसको देखे तो। अल्लाह की जात तो हदूद और कयूद जमानो मकान से पाक है, आप उसको किसी चीज में समेट सकते हैं? आप बताइए कि अल्लाह की जात इस 5-6 फुट के वजूद में आ सकती है? तो फिर जब इंसान गुनाह करता है तो क्या अल्लाह भी उस वक्त गुनाह करता है? ये सिर्फ नफरमानी की बातें हैं, ऐसे फितनों से बचने की जरूरत है, और आज के दौर में ऐसे फितने बहुत आम हैं। पढ़े लिखे मुल्कों में तो ये बातें बड़ी आम हैं, और हदीसों का इनकार और सुन्नतों से दूर कर कर आके लोगों को पीछे रखा। अभी तक जितना सबक किया इसका खुलासा ये है कि अल्लाह ने अपने नबी को चुना था, लेकिन जिन लोगों का दिल अभी पूरा नहीं खुला था ना, तो वो हीले बहाने करके निशानियां मांगते थे, मुझसे मांगते थे। अल्लाह ताला ने उनको बता दिया कि तुम्हें अगर नहीं मानना ना तो तुम मुझसे मानकर भी नहीं मानोगे। आगे इंशाल्लाह जब आदम और इबलीस का किस्सा पढ़ेंगे तो वो भी इसी की कंटिन्यूएशन है। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, कितने मिनट्स की? 15 मिनट की ब्रेक है, क्विकली लीजिए, वापिस आ जाइए इंशाल्लाह, क्योंकि अगला हिस्सा इतना अहम है कि उसके लिए जितना भी वक्त होगा वो थोड़ा है। अगर आप ब्रेक लंबी करेंगे तो फिर वो आपका ही वक्त कम होगा, क्योंकि सबक तो हमने इंशाल्लाह पूरा करना है। ठीक है, ऑनलाइन पे भी लिखिए, शेयर करना चाहें, कोई सवाल है तो पूछ लीजिए जी। क्या सीखा आपने अभी के सबक से? कोई दो लोग शेयर करें इधर से। जी इरम, आपने क्या सीखा? ये सामने वाली इरम, आप ऊंची आवाज से जरा बात करें ताकि सब सुने।
अल्लाह का कुर्ब, मैं अक्सर एक्चुअली जब अकेली होती हूँ तो सोचती हूँ कि यार मैं वाकई अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहती हूँ और करने की कोशिश कर रही हूँ, और मैं अकेले तो मुझे घबराती नहीं हूँ, बाकी उस सब ने अपने अल्लाह को और भी ज्यादा करने की कोशिश करती
हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, ब्रेक लीजिए आप लोग।